नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच रेल सेवा शुरू होने से रेल संपर्क में बड़ा बदलाव आया है। श्री वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस विस्तारित सेवा को रवाना किया। इससे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र तक रेल संपर्क प्रदान करके देश भर के यात्रियों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि ये रेलगाड़ी नियमित रूप से शनिवार से शुरू होगी।
आज जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन लास्ट ईयर किया था और वंदे भारत सर्विस चालू की थी, 8 कोच की ट्रेन को 20 कोच की ट्रेन में अपग्रेड किया गया है आज, और जो कटरा से श्रीनगर चलती थी उसको एक्सटेंशन करके जम्मू से स्टार्ट किया गया है। ये जम्मू कश्मीर की सभी जनता के लिए, सभी आवाम के लिए, सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहेगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से इस क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ है।
जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए धारा 370 हटने के बाद में डेवलपमेंट की जो नई धारा चालू हुई है, एंटायर नॉर्दर्न बॉर्डर अगर हम ले, एंटायर नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया में रेलवे का पूरा एक नया जाल बिछाया जा रहा है, कंप्लीट नेटवर्क को एक्सपैंड किया जा रहा है, और नेपाल बॉर्डर के साथ वाले एरिया नॉर्दर्न बॉर्डर में वहाँ पे रेलवे लाइन्स को डबल किया जा रहा है।
रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जून में कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत रेल सेवा शुरू होने से अब तक 5.5 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए इस सीधी रेल सेवा की शुरुआत से यात्रा में सुगमता बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवादी हमलों के बाद केवल कूटनीतिक बयान जारी करने वाली पुरानी मानसिकता से बाहर आ चुका है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो कोसेटो से पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन संबंधी नियम कल से लागू हो जाएंगे। इसके अंतर्गत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा इन खेलों के विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस का राजस्व 5,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। संगठन ने कहा कि लखनऊ में नए केंद्र में परिचालन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही मिसाइलों का उत्पादन शुरू हो गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के वर्ष 2025-26 में 4,000 करोड़ रुपए के 2 निर्यात अनुबंध मिले हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा निर्यात का महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों में अनाधिकृत प्रवेश की संभावना को समाप्त करने के लिए अपने ECINET प्लेटफॉर्म के माध्यम से QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। ये व्यवस्था 4 मई से असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना के दौरान लागू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र दिन भगवान बुद्ध के पृथ्वी पर आगमन, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह कल लद्दाख में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय मुसलमान के लिए हज को सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एयरलाइंस ने $300 से $400 की मांग की थी, लेकिन मंत्रालय ने इसे प्रति यात्री $100 तक सीमित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि कल ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। पहले खेलते हुए बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 126 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 6ठे ओवर में 2 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।